भूमिका। हिंदी में दलित साहित्य की व्यापक चर्चा 1990 के बाद ही शुरू हुई। हालांकि दया पवार की बहुचर्चित मराठी आत्मकथा बलुंत का हिंदी अनुवाद अछूत और पीई सोनकांबले की अठावड़ीच बख्शी यानी यादों के पंक्षी भी हिंदी में काफ़ी पहले छप चुकी थी। 1994 के बाद मेरी रुचि भी दलित साहित्य और साथ ही अश्वेत साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन की ओर हुई। हालांकि अश्वेत साहित्य की कई रचनाएं और अछूत आदि में बहुत पहले पढ़ चुका था। 1993 में नागपुर से डॉक्टर विमल कीर्ति ने हिंदी में अगुत्तर का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने नागपुर में हिंदी के दलित लेखकों का सम्मेलन भी किया। इस बीच दलित साहित्यिक आंदोलन विकसित हुए और उन्होंने देश भर में अनेक जगहों पर अनेक संगोष्ठियाँ की, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़ अन्य राज्यों या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अभी दलित साहित्य की अकादमिक स्तर पर कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही थी। इस बीच मेरे पास उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से किसी विषय पर भारतीय साहित्यिक राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित करवाने का प्रस्ताव आया। मैंने भारतीय साहित्य में दलित व स्त्री विषय का चुनाव किया और कुरुक्षेत्र के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर भीम सिंह दहिया ने इस संगोष्ठी के लिए आतिथ्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। प्रोफेसर दहिया स्वयं अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षाविद हैं और उनकी टीम में डीन अकादमिक रूप में अंग्रेजी के प्रोफेसर व हिंदी के प्रखर विद्वान प्रोफेसर ओम प्रकाश ग्रेवाल कार्यरत थे। इन दोनों विद्वानों ने 1979 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति के उत्पीड़क रवैये के प्रति आंदोलन का नेतृत्व किया था और उस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोध छात्र के रूप में रोहतक में JNU से अध्यापक नियुक्त हो चुके कुछ अन्य मित्रों के साथ इस आंदोलन में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया था। प्रोफेसर दहिया ने न सिर्फ इस संगोष्ठी के लिए आतिथ्य स्वीकार किया, हर प्रकार के अन्य सहयोग का आश्वासन भी दिया और यह आश्वासन पूरा भी किया। प्रोफेसर ग्रेवाल ने इस संगोष्ठी में पूरे समय भागीदारी की। इस आयोजन में दया पवार को भाग लेना था और उनका आलेख पहले ही पहुँच चुका था, लेकिन सरकारी संस्थानों की ऐसे कार्यक्रमों के प्रति संवेदनहीनता के कारण न केवल दया पवार बल्कि संगोष्ठी में भाग लेने वाले एक अन्य प्रमुख विद्वान EV रामकृष्ण भी संगोष्ठी में इसलिए भाग नहीं ले पाए कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्कालीन निदेशक को संगोष्ठी की प्रस्तावित तारीखें 7, 8 और 9 अप्रैल 1995 को कोई अन्य व्यस्तता आ गई और केवल इसी कारण से संगोष्ठी की तारीख बदलकर 17 से 19 अप्रैल करनी पड़ी। जो विद्वान 7, 9 अप्रैल को रेलवे बुकिंग वगैरह करवा चुके थे उनमें से कुछ ने 17, 18 को आना स्थगित कर दिया। दया पवार लगभग इन्हीं दिनों दिल्ली में अचानक चल बसे, लेकिन इन कमियों के बावजूद यह राष्ट्रीय संगोष्ठी ऐतिहासिक साबित हुई और कम से कम सभी हिंदी भाषी राज्यों व उत्तर क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय में दलित साहित्य पर व्यवस्थित ढंग से विचार करने वाली यह सर्वप्रथम संगोष्ठी रही जिसकी व्यापक चर्चा भी हुई। हालांकि अमृतसर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में मेरे कार्यस्थल पटियाला जहाँ मेरा परिवार था और कुरुक्षेत्र के बीच अपने खर्चे पर ढेरों चक्कर लगाने अपने व्यक्तिगत फ़ोन से सैकड़ों STD फ़ोन करने जैसी अनेक असुविधाओं का सामना करने के बाद भी मुझे केंद्र की ओर से न तो कोई मेरे द्वारा किए गए खर्च की अदायगी की गई और न ही श्रम के लिए कोई पारिश्रमिक ही दिया गया। इसके विपरीत मेरे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ही अंग्रेजी के प्रोफेसर हरीश नारंग द्वारा 1997 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान में अक्टूबर 1997 में दलित और अश्वेत साहित्य कुछ विचार विषय पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का अनुभव अत्यंत सुखद रूप से आश्चर्यजनक था। संस्थान द्वारा हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 2 अलग पुस्तकों के रूप में संगोष्ठी में पढ़े गए पेपर छापे गए, जबकि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की 1995 की संगोष्ठी के अत्यंत महत्वपूर्ण आलेखों को मैं 2000 ईस्वी में केंद्र के नए निदेशक के सहयोग से ही छपवाने में सफल हो पाया। इन दोनों संगोष्ठियों के अतिरिक्त हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार जगदीश चंद्र के उपन्यासों में दलित जीवन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भी मैंने जालंधर में करवाई, जिसका असर पंजाब और पंजाबी भाषा में दलित साहित्य पर चर्चा की शुरुआत के रूप में हुआ। इन संगोष्ठियों के साथ साथ हिंदी और कवि का भार पंजाबी के दलित लेखन और महाराष्ट्र से शुरू हुए दलित साहित्यिक आंदोलन के विचार और व्यवहार पक्ष पर हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाओं में तभी से निरंतर लिखना भी मैंने शुरू किया। हिंदी की चर्चित पत्रिका वर्तमान साहित्य में दलित विषय विमर्श कालम में ही काफी लेखन किया। इस सारे लेखन को अब इस पुस्तक के रूप में संकलित करते हुए मुझे इस बात का संतोष है कि हिंदी में दलित साहित्य की धारा जो अब काफ़ी सशक्त रूप ले चुकी है, इसे इस स्तर तक पहुंचाने में छोटी सी भूमिका उपरोक्त संगोष्ठियों व मेरे लेखन की भी है। लेकिन दलित साहित्य के चिंतन पक्ष, आलोचनात्मक कलात्मक पक्ष व सौंदर्य बोधात्मक पक्ष पर अभी हिंदी में पर्याप्त गंभीर लेखन सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र और मराठी भाषा में दलित साहित्य पर गंगाधर पानतावड़े द्वारा संपादित अस्मिता दर्श जैसी पत्रिका और अर्जुन डांगले द्वारा अंग्रेजी में संपादित दि पॉइजन ब्रेड जैसी गंभीर चिंतन परक पुस्तक अभी हिंदी में आनी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में हिंदी के दलित केंद्रित साहित्यिक लेखन में इस पक्ष की ओर विशेष ध्यान जाएगा। चमनलाल, प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 67।